अगले दिन संडे था। चाहत सुबह 9 बजे के करीब घर आई। वो एक रेंटल हाउस में अपनी माँ के साथ रहती थी। निशा शर्मा, जो चाहत की माँ थी, वो घर की सफाई कर रही थी। वो एक 42 साल की दुबली पतली महिला थी। चाहत को देखते ही वो अपनी थकी हुई आवाज़ में बोली, तुम पूरी रात कहाँ थी? बोलते हुए वो चाहत के पास आई। उनकी आवाज़ में चाहत के लिए फ़िक्र थी। निशा ने आगे कहा, तो कॉल करके बता देती बेटा, मैंने कॉल किया तो मेरा कॉल उठाया नहीं, रात भर तेरे लिए परेशान होती रही। मैं रात को श्रद्धा के घर पर थी मॉम, कल पहले दिन ही ओवरटाइम करना पड़ा था तो रात को देर हो गई थी, तो मैं सीधे उसके घर चली गई, चाहत कहते हुए सोफे पर आकर बैठ गई। हाँ तो एक बात बता तो देती, तुम्हें पता है ना घर पर हमें तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है। उसकी माँ किचन से उसके लिए पानी लेने चली गई। उसने पानी लाकर दिया तो चाहत ने कहा, एक कप चाय भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है, मैं बना देती हूँ, आज नानी यहाँ आने वाली है, बेटा उन्हें जाकर स्टेशन से ले आना, निशा बोली। उनकी बात चाहत ने छोटा सा मुंह बनाया और कहा, उन्हें कितनी बार कहा वो यहीं पर रह ले, मामी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। चाहत की बात सुनकर निशा का चेहरा उतर गया। वो मायूसी से बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, पर उनकी भी तबीयत सही नहीं रहती और ना ही मेरी। बेटा तुम पहले बहुत प्रेशर ले रही हो, मैं नहीं चाहती इतनी कम उम्र में तुम पढ़ने के बजाय काम के लिए इधर उधर घूमो। कोई बात नहीं मम्मा, मैं आप दोनों का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, बोलते हुए चाहत ने निशा को गले लगा लिया। इस दुनिया में उन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। चाहत के पिता ने उसकी माँ को बहुत पहले छोड़ दिया था। निशा के मायके में उसके भाई भाभी का बर्ताव अच्छा नहीं होने की वजह से वो अकेले ही रहती थी। उनकी माँ पार्वती जी कभी कभार उनसे मिलने आया करती थी। फिर निशा जी ने चाहत के मूड को सही करने के लिए कहा, कल हम शॉपिंग करने जाएंगे, घर का राशन खत्म हो गया है, तुझे कुछ चाहिए तो बता देना। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि कल आपके साथ ही चलूंगे। मैं कल फ्री हूँ मम्मा, चाहत ने बताया। तुम क्यों फ्री रहोगी, तुम्हें कल काम पर नहीं जाना क्या? चाहत की माँ ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। नहीं मॉम, चाहत ने लाचारी से कहा, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी और मुझे फिर से निकाल दिया। अब श्रद्धा को कहा है तो वो मेरे लिए कोई नया काम ढूंढेंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें नया काम मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम हर वक्त हमारी टेंशन में रहती हो, इस वजह से तुमसे काम में गड़बड़ हो जाती है। कोशिश किया करो कि फोकस रहकर काम करो, निशा जी ने समझाया। वो चाहत की परेशानी अच्छे से समझ सकती थी, काफ़ी कम उम्र में उस पर निशा जी की जिम्मेदारी आ गई थी। मैं ढंग से काम करने की कोशिश करती हूँ मगर फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, अब क्या करूँ आप ही बताओ। आधी गलतियाँ तो मैं इसलिए कर जाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, ना रखूँ तब तो गलतियाँ होनी ही हैं, पता नहीं मुझे कहाँ से ये आदत लग गई, चाहत ने कहकर दोबारा अपने बालों में उंगलियाँ थेरना शुरू कर दी। निशा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। चाहत से बात करते वक्त उन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ, लेकिन वो चाहत को कुछ जताना नहीं चाहती थी। वो चक्कर खाकर गिरती उससे पहले उन्होंने चाहत को गले लगा लिया और प्यार से सहलाने लगी। उनकी आंखें बंद थीं, फिर आंखों से आंसू का कतरा बह गया। आहान संडे होने की वजह से घर पर ही था। वो अपने किचन में था और अपने लिए खाने के लिए कुछ बना रहा था। उसके पास म्यूजिक चल रहा था जिसके साथ मूव होते हुए वो अपने लिए खाने के लिए कुछ बना रहा था। ओह, जब दिमाग में गुस्सा नहीं होता तो कितना सुकून मिलता है, ये सुकून बस ऐसे ही बना रहे। उसने फ्राइंग पैन पकड़ा और जो भी बना रहा था उसे उछलते हुए इसे एंजॉय करने लगा। नाश्ता बनाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर उसे खाने लगा। खाते खाते उसने मिस्टर राणावत को कॉल लगाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर राणावत। जैसे ही मिस्टर राणावत ने फ़ोन उठाया, आहान बोला। मिस्टर राणावत आधी अधूरी नींद में थे, उन्होंने फ़ोन पर नाम नहीं देखा था, तो वो बोले, कौन? कमाल है, इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मैं हूँ आहान ओबेरॉय, आहान ने कहा। जैसे ही मिस्टर राणावत ने ये सुना वो उठकर बैठ गए। अरे सर, आपने मुझे सुबह सुबह कैसे याद किया? मिस्टर राणावत का पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। बस ये बताने के लिए, वो लड़की जो भी थी वो मुझे अपने ऑफिस में चाहिए। कल मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर वो लड़की कल सुबह तक मेरे ऑफिस में काम करने नहीं आई तो आप खुद अपने हाथों से लिखकर अपना रिज़ाइन मुझे दे जाना, वरना मैं निकलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आहान ने कहा। मूड सही होने की वजह से वो काफ़ी नॉर्मली बात कर रहा था। पर सर, वो कहीं और काम करने लगी है, मैंने की थी कल उससे बात, मिस्टर राणावत बोले। तो जहाँ काम करती है उसे वहाँ से निकालो और निकालकर यहाँ लेकर आओ, आहान ने कहा। दे दो जितना सैलरी का ऑफर देना चाहते हैं आप। मगर उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं है, आप अपनी कंपनी में पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को रखते हो जबकि उसकी तो ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं हुई, मिस्टर राणावत ने बहाना बनाया। समझिए, अब से कंपनी के रूल बदल गए हैं, आहान ने कहा, अब कंपनी में कोई भी आकर काम कर सकता है। पर सर, मिस्टर राणावत को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे।
तुम जानते हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, ना ही मैं किसी से इतनी बात करता हूँ, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। कल सुबह जब मैं अपनी कंपनी में पहुँचूँ तो वो भी मुझे वहाँ मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो आप सोच लीजिएगा आपका आगे क्या होने वाला है, आहान ने कहकर कॉल कट कर दिया। जैसे ही उसने कॉल रखा, मिस्टर राणावत ने अपने चेहरे पर टेंशन दिखाते हुए कहा, यार अजीब मुसीबत सर पर आकर बैठ गई है। उसे लड़की में आखिर ऐसा है क्या जो ये पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गए? जरूर ये उस लड़की को कोई बड़ी सजा देना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए सूट खराब करना भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी, इसलिए वो उस लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। वो ये बोलकर वापस सो गए। चाहत अपना काम निपटाकर पास ही के रेस्टोरेंट में पहुंची। ये उनके मालिक का रेस्टोरेंट था। जब भी चाहत के पास काम नहीं होता वो वहां आ जाती। वो जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी तो ग्राहक के तौर पर आसपास के मोहल्ले के लोग और आसपास काम करने वाले लोग यहाँ पर आते थे। कैसे हो आप सब लोग? चाहत ने रेस्टोरेंट में मौजूद नाश्ता करने वाले लोगों की तरफ देखते हुए कहा। सब 40 साल की उम्र से ऊपर के लोग थे और वो पास के ही कारखाने में काम करते थे। उनका सुबह सुबह का नाश्ता यही होता था। सब ने ठीक है कहा। चाहत मुस्कुराते हुए किचन एरिया में गया। वहाँ रेस्टोरेंट ओनर खाना बना रहे थे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग चाचू। आज के लिए आपकी असिस्टेंट हाजिर है, चाहत ने कहा और उनके लिए सब्जियां कट करने लगी। रेस्टोरेंट ओनर, जिनका नाम रवि था, उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, पर कल रात तुम कहाँ थी? निशा जी तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। मत ही पूछिए चाचू, कल का दिन बहुत बड़ा रहा मेरे लिए। नए काम पर पहला दिन था तो पहले दिन ही मुझे ओवरटाइम करना पड़ा। रात को जाकर 11 बजे फ्री हुई तो काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं श्रद्धा के घर पर चली गई थी, चाहत ने बताया। अगर तुम ये बात बता देती तो क्या होता? रवि जी ने कहा। तुम्हें तो पता है निशा जी को तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी चाचू, चाहत ने मुस्कुराकर कहा और अपना काम करने लगी। चाहत ने अपना काम खत्म किया और फिर तैयार होकर घूमने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा अपने घर पर ही थी और इस वक्त एक मूवी देख रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल किसी ने बजाई।
इस वक्त कौन हो सकता है, श्रद्धा ने सोचा और खड़ी होकर दरवाजे पर जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के ठीक दूसरी ओर उसके अंकल मिस्टर राणावत थे, हैरान, परेशान और उतरे हुए चेहरे के साथ। श्रद्धा के दरवाजा खोलते ही अपने हाथ जोड़े और बोले, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें जरूरत थी तब मैंने भी की थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेरी है। एक्चुअली आहान ओबेरॉय ने किसी छोटी कंपनी को टेक ओवर किया था, मैं उनके यहाँ काम करता था। मैंने उस कंपनी के रूप में उनसे एक चांस मांगा था और उन्होंने दिया। मेरी मदद करो वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तुम ही मेरी इकलौती उम्मीद हो अब। मिस्टर राणावत ने श्रद्धा को सब बता दिया। श्रद्धा ने अपनी आंखों को तिरछा किया और बोली, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं, पर चाहत अब काम नहीं कर सकती। श्रद्धा के साफ मना करने पर मिस्टर राणावत वहीं गिर गए। पहले वो परेशान थे तो वहीं उनके चेहरे पर डर के भाव थे, आहान ओबेरॉय का डर।